जो खुदावंद ने पौर्शविक्टर की जानिब से आप सबों को बहुत सलाम। आज जो मैं आपके लिए तर्जमा लेके आई हूँ, जेंटिनसन फ्रैंकलिन है हमारे स्पीकर, और आज के मैसेज का उन्वान है गॉड्स प्रस्पेक्टिव ऑन पेरेंटिंग, यानी खुदा का नुक्ता नज़र, खुदा का नज़रिया, खुदा का ख्याल क्या है वालदेनों के लिए, या क्या चाहता है खुदा, वालदेनों से क्या एक्सपेक्ट करता है, बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत कंपोज्ड मैसेज है, और ये आज मैंने वर्ड बाय वर्ड तर्जमा किया है। पिछले 2 दिन से भी जो मैंने वर्ड बाय वर्ड तर्जमा किया वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। मैं आइंदा से कोशिश करूँगी कि मैं जो है इनका खुलासा कर सकूं, लेकिन चूंकि मैसेजेस इस कदर खूबसूरत हैं और इस कदर इन्फॉर्मेटिव हैं, मैं कोई चीज़ निकालना नहीं चाहती, तो मैं वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जमा करती हूं। जेंसन, आज ये कहते हैं कि 2 बातों से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 निशानियां। पहली तो ये है कि आप जान जाएंगे कि जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो आपसे ये पूछना छोड़ देंगे कि वो कैसे इस दुनिया में आए, और दूसरा ये कि जब वो घर से बाहर जाने लगेंगे तो आपको वो ये बताएंगे नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो नसीहत अपने वालदैन की जो हमेशा तर्क करते रहे, अब हम वही अपने बच्चों को देना चाहते हैं। पांचवा हुक्म, अपने माँ और बाप की इज्जत कर। हमें ये याद रखना होगा कि ये खुदा का हुक्म हमसे तवक्का करता है कि हम अपने माँ बाप जो कि बूढ़े जब होने लगें, तो जब इनको हमारी ज़रूरत हो, हम इनकी ना सिर्फ इज्जत करें, खिदमत करें। ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा के लिए बहुत अहम बात है। और कैसे हम अपने वालदैन की इज्जत कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहला तो कि उनको हम एक्सेप्ट करें, यानी उनको कबूल करें। कलाम कहता है कि हम अपने माँ बाप को कि अपने माँ बाप को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान, ये इम्साल की किताब में है। वो कामिल नहीं है, माँ बाप जो है वो कामिल नहीं होते, हमारे माँ बाप कामिल नहीं है, हम भी कामिल नहीं है, मगर हमने उनकी इज्जत उनको कबूल करके करनी है। जब हम अदालत में जज से मुखातिब होते हैं तो हम उसे योर ऑनर कहते हैं, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, हम उसे जानते तक नहीं हैं, बल्कि हम उसके जो है मर्तबे की यानी उसकी पोजिशन की जो है वो इज्जत करने पर मजबूर होते हैं। और यही बात है जो खुदा हमें समझाना चाहता है कि माँ बाप के लिए यही बात है कि हमें माँ बाप की पोजिशन की वजह से, खुदा के कलाम की वजह से उनकी जो है वो इज्जत करनी है, और उन्हें जो है हमने उनकी कमी कमजोरियों समेत जो है वो कबूल करके मोहब्बत और इज्जत का जो है वो दर्जा देना है। दूसरा, हम किस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं, उनकी तारीफ करके, यानी उनको अप्रिशिएट करके, हर बात के लिए उनकी तारीफ करें। और ये देखें कि बच्चों को पालना कितना महंगा, कितना मुश्किल, कितनी जिम्मेदारी का काम है, किस कदर थका देने वाला काम है। इसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानी, बहुत ज़्यादा मेहनत और जो है बहुत ज़्यादा मुशक्क़त शामिल होती है, और हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो जो है वो माँ बाप जो है वो इस ज़िम्मेदारी से, खूबसूरती से बच्चों को पाल सके, ये हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। एक कहानी छोटी सी उन्होंने कही कि, या सॉरी, वाक्य उन्होंने शेयर किया कि एक बच्चे ने अपनी माँ को बिल दिया कि मैंने जो घर में जो जो काम किए हैं मुझे इसकी जो है वो तनख्वाह या उजरत चाहिए। वो कुल मिला के बच्चे के काम जो थे एक दिन के वो $10 हुए। माँ ने सोचा कि मैं भी इसे अपना बिल बनाकर जो है वो देती हूँ। माँ ने अपने सारे कामों का बिल बना के दिया जो उसने उसके पैदा होने के दिन से लेकर आज तक किए थे। माँ ने उस सारे काम जो थे वो बिल में लिखे, जिसमें उसने लिखा, मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, इस्त्री करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, मैं जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हारी नर्स हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल लेके जाती, छोड़ के आती, तुम्हारी आयागिरी करती रही, और हर बात को उसने लिखा। तो टोटल बिल जो था वो बहुत ही अनलिमिटेड था, क्योंकि वो हजारों डॉलर्स में जो है वो उसने आगे जो है उसकी वो कीमत लिखी। लेकिन बिल के आखिर में माँ ने लिखा कि मैं सिर्फ जो है वो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आई लव यू। माँ ने ये जुमला कि आई लव यू माई सन। माँ बाप जो हैं अपने माँ बाप की कुर्बानियों का, उनकी मुशक्कतों का, उनकी मेहनतों की कदर करना जो है वो हम पे फ़र्ज़ किया गया है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा जो है वो उससे खुश होगा, क्योंकि ये खुदा का पांचवा हुक्म है। तीसरा तरीका अपने माँ बाप की इज्जत करने का ये है, बाय अफर्मिंग दम, यानी तस्दीक करना, कदर करना। जब हम जब हमारी ये हमारे इस्तात में हो, यानी हम इस लायक हों कि हम उनकी फाइनेंशियली मदद कर सकें और उनको जो है वो फिजिकली हम जो है मदद कर सकें, साइकोलॉजिकली मदद कर सकें, इमोशनली मदद कर सकें। और ये सब घरों में होता है कि जब माँ परेशान होती, बच्चे उसे गिरदा के बैठ जाते हैं, घर के कामों में माँ माँ की जो है वो बेटियाँ खास तौर पे मदद करवाती हैं। तो और इस तरह से होता है जब बच्चे कमाने लगते हैं तो वो अक्सर अपने माँ बाप की मदद करते हैं। तो यहाँ पे यही पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कर सकें तो हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि उनसे हम अपना हाथ ना रोकें। और इस बात का हम जो है वो इकरार करें कि वो भी इंसान हैं और जो है वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और माँ बाप के तजर्बात और उनकी मेहनतों को समझें और उसका एहसास करें, उनकी कदर करें कि उन्होंने किन किन हालात में हमारे लिए क्या क्या किया। आज तो ख़ास तौर पे ये मैसेज जो है वो जेनेटन फ्रैंकलिन ने नौजवान बच्चों के और पूरे चर्च के लिए है, माँ बाप के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों और पेरेंट्स दोनों को मुखातिब करके ये मैसेज दिया गया है। और वो ये कहते हैं कि इसमें जो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन जैसे आप गैस का चूल्हा सीधा जला लेते हैं और बत्ती बटन दबाते हैं तो बत्ती जला लेते हैं, और जो है वो बाकी सारी सहूलतें हैं, हर किस्म की मशीनें हैं घरों में, लेकिन जो है आज से जो है पिछली सदी में चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो जिन हालात में हमारे माँ बाप ने हमें पाला वो इतना आसान नहीं था जितना आज की दुनिया में जो है वो सहूलत है। तो यही बात है कि हम अपने माँ बाप की जो है मेहनतों का, उनके तजर्बों को जो है ना सिर्फ उनको समझें बल्कि जो एक नॉलेज करें और उसका एहसास करें, हम उसकी कदर करें, क्योंकि वो भी इंसान है। और अपने वालिदैन की तारीफ़ करना, खिदमत करना जो है वो बहुत सी दुआओं का हमारे लिए जो है ढेर लगा देगा। हमारे माँ बाप हमसे खुश होंगे और आसमान पे खुदा जो है वो बहुत खुश होगा। और अफसोस की बात, वो कहते हैं कि कुछ लोग अपने माँ बाप को सिर्फ उनकी फ्यूनरल पे यानी तदफीन के वक्त इज्जत देते हैं, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसका क्या फ़ायदा कि जो जा चुके हैं, अब इससे उन्हें माँ बाप को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको क्या खबर कि आप उनके जनाजे में शरीक हुए नहीं शरीक हुए, कि आपने उनके जनाजे में फूल रखे, कितनी इज्जत दी, उससे माँ बाप को उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा फ़र्क जो है वो उनकी ज़िंदगी में पड़ता है कि आप जो है उनकी ज़िंदगी में उनके लिए क्या करते हैं, उनसे कितनी दुआएँ देते हैं, उनको कितनी खुशी से जो है आप उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में और जो है जब तक वो आपके साथ हैं उनकी ज़िंदगी को आप कितना खूबसूरत बनाते हैं। चौथा पॉइंट जो है कि हम अपने पेरेंट्स को अबैंडन ना करें, अबैंडन माने तरक ना करें। ये बात वो कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हमारे माँ बाप जो है वो बूढ़े हो जाएं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब जो है हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें जो है वो बाहर नहीं फेंक दिया था सड़क पर, और आज वो बूढ़े हो गए हैं तो हम उन्हें तरक नहीं कर सकते, बल्कि इसी हमें हर तरह से उनकी खिदमत करनी है, उनको खुश रखना, उनकी सहूलत करनी है, उनकी मदद करनी है। चाहे आपका साथी इस बात से ना खुश है तो आपको अपने साथी को ये बात समझानी होगी, ये आपकी बेहतरीन ज़िम्मेदारी है और इस मसले का हल आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा कैरेक्टर है। आप देखेंगे यूरोप में भी जेनेटन फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि वो ये कह रहे थे कि एशियन माहौल में तो जो है वो लोग अपने माँ बाप को खुद ही संभालते हैं, यहाँ पर जो है वो नर्सिंग होमों में डाल दिया जाता है, तो लेकिन वो ये समझते हैं कि खुदा के कलाम की बिल्कुल खिलाफ है कि जब माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं कि जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो इस तरह खुदा आपको हैरान कुन तरीके से बरकत देगा। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से एक बात कहूँगा कि जब उनके दोस्त उनको किसी बात पे उनके वालदैन से मुतल्लिक कहें कि जैसे यार आज तुम हमारे साथ फिल्म देखने चलो, या आज हमारे साथ जो है वो कहीं ऐसी जगह चलो जैसे घूमने फिरने और हमारे साथ पार्टी में ठहरो, तो बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया। तो अपने दोस्तों के सामने और अपने दिल में दोनों में ये जो है वो टीनेजर को जेंटन कह रहे हैं कि कभी ये ना कहें कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करता हूँ। उन्होंने कहा माँ बाप भी अक्सर आपको पसंद नहीं करते, जिस तरह माँ बाप आपस में बात कर रहे होते हैं और आप वहाँ आ जाते हैं वो चुप हो जाते हैं, ये दोहरा अमल है कि माँ बाप भी कई बातों में अपने बच्चों की जो है वो मुदाखलत पसंद नहीं करते, उनकी जो है वो दखल अंदाजी के अलावा अक्सर जब बच्चे जो है वो कई बातों में माँ बाप को नाराज़ करते हैं लेकिन फिर भी माँ बाप जो है उनको बर्दाश्त करते हैं। इसी तरह बच्चों को भी कभी ये नहीं कहना है कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करता हूँ, मैं उनको नापसंद करता हूँ। माँ बाप ही इंसान हैं, वो फीलिंग की तरह बनाए गए हैं, वो फर्नीचर नहीं जिसको आपने ना कभी गले लगाना है ना कभी आपने चूमना है। अगर जो है आपके माँ बाप आपसे वक्त पे आने के लिए कहते हैं कि आप शाम को बाहर गए रात हो गई, तो आप अपने बच्चों से अक्सर कहते हैं कि टाइम पे आ जाना, 10 बजे या 11 बजे तक आ जाना, तो ये जवाब ना दें कि मैं जो हूँ वो अब बच्चा नहीं हूँ। जैसे बच्चा अब 20 साल का हो जाता है, बेटा है बेटी है, तो वो आगे से पलट के जवाब देता है जी माँ कहती है कि रात 10-11 बजे तक आ जाना, क्योंकि کہ ماں فکرمند ہوتی، باپ فکرمند ہوتا، بچہ پلٹ کے کہتا میں بچہ نہیں ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، تو کہتے ماں باپ جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں، یہ جانتے ہیں اور وہ تجربہ رکھتے ہیں کہ باہر کیا حالات ہیں، اس لیے جو ہے وہ فکرمندی سے اور پریشانی سے جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ان کا بچہ دیر تک باہر رہے اور اس کے ساتھ کوئی اونچی نیچی یا کوئی حادثہ ہو جائے، اس لیے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو وے میں جو ہے ماں باپ محبت سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اکثر بچے کہتے ہیں کہ میری ماں ہر بات کو جو ہے وہ بہت دہراتی ہے، وہ اس لیے دہراتی ہے کہ آپ بات کو ایک بار نہیں سنتے، اور اکثر جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچے کو گھر میں جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بچے بیٹھے رہتے ہیں خالی فضول، اور جو ہے وہ جیسے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے یا ریموٹ لے کے بیٹھے رہے، سوری فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس طرح سے رسپانس دیں گے کہ آپ جو ہے وہ بالکل مدد نہیں کرے تو آپ ماں باپ سمجھیں گے کہ شاید یہ بچہ جو ہے وہ ڈرگز لے رہا ہے یا اس کا دماغی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دراصل جو ہے وہ بچوں کو ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، یہ خدا کی نظر میں بھی بھلا ہے، اور اپنے خاندان کے ساتھ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وابستہ رہیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے ہر کام میں ذمہ داری لیں اور خود غرض نہ بنیں، اپنے والدین کو عزت اور تمیز سے مخاطب کریں کہ کیسے آج کل کے نوجوانوں کو جب ہم منع کرتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے وہ سٹیٹسٹکس یعنی شماریات میں ماہر ہو جاتے ہیں، اور وہ فوراً سے جواب دیتے ہیں کہ دوسرے تو ایسے نہیں کرتے، اور وہ دوسرے کون ہیں، سروے میں جو ہے وہ صرف ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے، تو بچے ہمارے بہت جلدی جواب دینے میں یہ چیز سیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کے ماں باپ تو ان کو ایسے نہیں کہتے، ان کے ماں باپ تو ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کے کون ہیں، صرف ایک یا دو شخص. اسی طرح سے مارک ٹوائن نے ایک بہت مزاحیہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا جب میں 14 سال کا تھا میرا باپ انتہائی لاپرواہ تھا، جب میں 14 سال کا تھا میرا باپ انتہائی لاپرواہ تھا، میں اس کو مشکل برداشت کرتا تھا، جب میں 21 سال کا ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ میرے باپ نے ان 7 سالوں میں کتنا سیکھا ہے. تو یہ ایک جو ہے بہت ایسی بات ہے کہ جب ہمارے ماں باپ سوری جو ہمارے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ کو وہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، آج کل کا سب ہمیں پتہ ہے، اور جب یہ نوجوان ماں باپ بنیں گے تو انہیں جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کتنا کم علم رکھتے ہیں. یسوع وہ واحد نوجوان تھا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ علم رکھتا تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنے آپ کو ان کے تابع کیا. کلام کہتا ہے کہ وہ فرما بردار تھا اپنے ماں باپ کا، سب سے زیادہ فرما بردار تھا. سب سے زیادہ اہم وجہ ماں باپ کی عزت کرنے کی یہ ہے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے. ماں باپ کی عزت کرنا نہ صرف جو ہے وہ ماں باپ پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہم پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اس کی ریسیپی یعنی طریقہ یہ ہے کہ برکت، ترقی اور طویل عمری کلام کے مطابق جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، تو خدا بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. بچوں کی ڈیوٹی ہے، بچوں کا فرض ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں، اور ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ عزت کروائیں. ماں باپ کو لازم ہے کہ وہ بھی کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں، اور جو کہ قابل عزت زندگی ہے. اکثر بچوں میں ماں باپ کے تعلقات کا جو ہے وہ مکمل نقشہ پایا جاتا ہے، یعنی بچے جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ کون سا ماحول ہے. بجائے بچوں کو درست کرنے کے ان کے سامنے درست مثال رکھیں. آپ کی زبان کیسی ہے اپنے بچوں کے سامنے، آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کس طرح سے اپنی عملی زندگی پریکٹیکل لائف جیتے ہیں، آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ کس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اور ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ صرف خداوند اور یسوع جو ہے خداوند یسوع ہے، اور خدا جو ہے وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، خدا ان سب کے ساتھ ہے جو اس کو پکارتے ہیں، کیسے وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. خدا بھی ہماری سنتا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی بات سننی ہے. کسی نوجوان نے کہا کہ کوئی بات کرنے سے کیا فائدہ، گھر میں کوئی بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں سنتا کون ہے، ماں باپ اپنی ہی چلاتے ہیں. خدا ہمیں سمجھاتا ہے، کلام کہتا ہے کہ گھر جو ہے وہ حکمت اور سمجھداری سے بنتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی صبر سے پیش آئیں. ایک دن ایک باپ نے غصے سے اپنے بیٹے سے کہا کہ ونسٹن چرچل جو تھا وہ فل ٹائم کام کرتا تھا اور رات کو پڑھا کرتا تھا. بچے نے جواب میں کہا ہاں بالکل ٹھیک کہا، جب وہ آپ کی عمر کا تھا تب وہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر بھی تھا. تو بچے نے کیسا آگے سے طنزیہ جواب دیا، مطلب یہ ماں باپ پہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں. اچھی باتوں سے ہم اپنے بچوں کی گہری جڑیں اور ان کو ونگز یعنی پر دیتے ہیں. जड़ें जो खुदा के घर में गहरी हों और मसीही विरासत से ताल्लुक़ रखती हों, उस मसीही विरासत से मुतल्लिक हों, उनके सामने सब काम सिखाने के लिए करें। जैसे अक्सर नौजवान मियाँ बीवी जो है वो चर्च के अंदर जो है इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो खिदमत करना शुरू करते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो उनके बच्चे सीखते हैं। घर के कामों में भी जब मियाँ बीवी जो है जैसे छोटे छोटे कामों में बच्चों को जब वो इन्वॉल्व करते हैं तो वो सीखते हैं, और ये बेस्ट टाइम होता है जब हम अपने बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारते हैं और उनको सिखाते हैं, और उनके साथ जो 1:1 पे जो है हम उनके साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ों को ला रहे होते हैं, उन्हें सिखा रहे होते हैं उनकी अगली अमली ज़िंदगी के लिए। जब हम अपने बच्चों को खुदा के घर में लगाते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना और उन्हें लेके जाना चर्च में, उनका ध्यान रखना, उनको संभालना, ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, मगर ये बहुत कारामद होता है। ये जो है हमारी अफजल जिम्मेदारी है। आप इनकी ज़िंदगी को जो है वो शेप कर रहे हैं, ढाल रहे हैं खुदा के घर में, और जब उनकी जड़ें जो हैं वो संभल जाती हैं खुदा के घर में, तो उन्हें उन्हें उनके परों पे जो है वो उड़ने दें और उन्हें बड़े बड़े काम करने दें। और अक्सर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को चाहते नहीं है कि वो उनसे दूर हो जाएं, बल्कि सॉरी अलहदा हों जब वो बड़े हो जाते हैं, या शादी के बाद ख़ास तौर पे जब बेटे या बेटियाँ अपने घरों में अलहदा होना चाहते हैं, तो हमारे माँ बाप जो है वो चाहते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप जो है उन्हें पर, अभी हमने सीखा, गहरी जड़ें और पर दें, यानी उन्हें जो है जब वो इस काबिल हो जाते हैं तो उन्हें उनके परों पे उड़ने दें, उन्हें बड़े बड़े काम करने दें। फजल ये कहता है कि जब हमसे मोहब्बत की गई, हम जो है वो उस वक्त गुनाहगार ही थे जब मसीह हमारी खातिर हुआ, यानी अभी हम गुनाहगार ही थे, और खुदावंद यीशु ने हमारे लिए जो है हमसे मोहब्बत की और अपनी जान देके हमें निजात दी है। अपने बच्चों को भी इसी तरह फजल में से दें जो खुदावंद यीशु ने हमें दिया है, जब उन्हें वाकई इस फजल की ज़रूरत है। अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उन्हें कबूल करें, उस समय भी कबूल करें जिस वक्त वो नाकाम है किसी बात में। जैसे बच्चे अक्सर स्कूल में किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में फेल हो जाते हैं, तो माँ बाप का काम है कि वो जो है उसको जो है सपोर्ट करें, उसको समझाएं, उसको जो है वो जो ज़रूरत है जहां उसको मुश्किल पेश आ रही है उसके साथ माँ बाप जो है इंटरेस्ट देके उसकी मुश्किल को डील करें, उसका फ्यूचर बनाएं। और यहाँ पे हमें जो है माँ बाप होते हैं अपनी गलती का भी इकरार करना है जब हमने कुछ ऐसा किया है जो दुरुस्त नहीं है, और वालदैन होके भी हमें अपनी गलती को मानना है। अगर हमारी वाकई गलती है किसी बात में तो हमें उसको जो है वो मानना है, ताकि यहीं से हमारे बच्चे सीखें, और अपने वादे पे भी हम जो है वो कायम रहना सीखना है कि जब हमें जो है अपने वादे को पूरा करना बहुत मुश्किल हो तब भी। जैसे कई दफ़ा माँ बाप जो है वो किसी बात के लिए बच्चों से कहते हैं कि जब तक हमारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तुम्हें जो है फलां फलां चीज़ नहीं मिलेगी, ख़ास तौर पे जिस बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करता है, नए कंप्यूटर की या नए फ़ोन की या कोई गाड़ी की मोटरसाइकिल की, तो आप उसे कहें कि ठीक है मैं आपको ज़रूर लेके दूंगा, लेकिन उसके लिए जो है वो आप अच्छे नंबर लेके आएँ। आप उस वक्त अपने बच्चों की बेहतरी कर रहे होते हैं, और अगर जो है वो जब तक बच्चा आपकी बात को समझता नहीं है, मानता नहीं है, तो अगर आपने कहा है कि मैं उस वक्त लेके दूंगा जब अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर वही करें जैसा आपने कहा है, और अपने कहे से जो आप पीछे ना उठें। और अगर आपने ये कहा है कि मैं फलां फलां काम नहीं करूंगा, जैसे बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा कहते हैं कि जी ज़िद करते हैं, तो आपने उनसे जो वादा किया है कोई काम करने या ना करने का, तो वो उस वक्त जो है आप अपने फैसले पे डटे रहें। कहते हैं कि खुदा हमसे जो है वो प्यार करता है, खुदा अपने प्यार को हम पे कैसे जाहिर करता है, खुदा अपने वादों पे जो कायम रहता है, और मोहब्बत से, अफर्मेशन से जो है जो खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब देकर और हमें तवज्जा देके खुदा अपनी मोहब्बत हम पे जाहिर करता है। अपने बच्चों से जो है वो मोहब्बत करें, उन्हें अपने बाजुओं में लें, उन्हें चूमें, उन्हें लाड करें, और इन्हें मोहब्बत से हाथ लगाना, ये तरीके हैं माँ बाप के लिए। क्या आप अपने बच्चों से मोहब्बत का लफ्जी जिक्र करते हैं? क्या कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मेरे खास बच्चे हैं, मुझे आप पे फख्र है? क्या आप ये कहते हैं कि मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं, ये लाजवाब है? फिर अपने बच्चों पे अपनी तवज्जा, अपना टाइम दें, उनसे आई कांटेक्ट करें, उनकी बात सुन के दोहराएं कि उन्हें पता चले कि आप उनकी बात सुनते हैं, और उनसे मजीद तफसीलात तलब करें कि बच्चा आपको अपनी जो है वो बात समझा सके, ख़ास तौर पर जिस वक्त वो आपसे बात कर रहे हों कि आप जो है वो बात समझ गए, तो भी आप जो है उनकी पूरी होने तक जो है वो सुनते रहें, तवज्जा दें। खुदा तरबियत करता है अपने बच्चों की, हमें भी अपने बच्चों की जो है वो तरबियत करनी है, डिसिप्लिन करना है। इब्रानियों 12:6 में खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसकी तरबियत भी करता है, यानी अगर आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते तो फिर आप उनको प्यार भी नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप उनके दोस्त बन के रहें, जबकि वालदैन को कई दफ़ा जो है वो वालदैन की ज़रूरत होती है, दोस्तों की नहीं, जो उनकी तरबियत करे खुदा के कलाम के मुताबिक और जो कि ज़रूरी और मोहब्बत का निशान है। बहुत से वालदैन हैं जो अपने बच्चों को जो है वो खुला छोड़ देते हैं और अपने कुत्ते को बांध के रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नस्ल की 300 पीढ़ियाँ तक जो है वो जानते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि कल रात को उनका बच्चा कहाँ था, किसके साथ था और वो क्या कर रहा था। ये हमारी सख्त जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, और ना कि हम जो है वो उन्हें खुला छोड़ दें कि जहाँ मर्जी हमारे बच्चे जाएं और वो हमें जवाब भी ना दें, यानी इतने मुँह जोर हो जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अपने बच्चों की तरबियत पूरे तौर से करें, क्योंकि खुदा हमसे इसकी जवाबदारी करेगा। हम तीन चीज़ें अपने बच्चों को देने के ज़िम्मेदार हैं, एक तो ज़िंदगी और उनकी सेहत सलामती का ख्याल रखना, उनको संभालना, उनसे मोहब्बत करना, उनको खुश रखना, उनके साथ जो है वो हर तरह से उनकी खुशी का ख्याल रखना। और यहाँ पे तीन असूल उन्होंने कहे कि बी फर्म, बी फेयर एंड बी फन, यानी अपने बच्चों के साथ जो है मज़ा से भरपूर वक्त गुजारें, अपने बच्चों के साथ नरमी और सख्ती दोनों के साथ चलें, मुसावत के साथ काम लें। खास तौर पे ऐसा होता है कि कई ख़ानदानों में अगर दो तीन चार बच्चे हैं तो एक बच्चा बाप का या माँ का जो है वो बहुत लाडला होता है, तो यहाँ पे बी फेयर यानी ये नहीं करना। आप चार बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, मसावत से बिल्कुल बराबरी से जो है वो उनके साथ जो है चलें। ना तो आप हर वक्त सख्त माँ बाप हो सकते हैं, ना आप हर वक्त बच्चों के दोस्त बन के रह सकते हैं। आज जो है वो बच्चे इस बात को नहीं समझते कि आप उनको तरबियत दे रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छे वालदैन बनेंगे इस बात को जब वो समझेंगे और अपने बच्चों की तरबियत भी इस तरह से करेंगे। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप की तरह सख्त नहीं होंगे। ओ रियली? तो आप जो है वो फ़ौरन इस बात को बर्दाश्त कर जाएँ, क्योंकि बच्चे का जो जहन है वो 21 साल की उम्र तक जो है वो बढ़ रहा होता है। यहाँ अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तर्क कर दिया गया है, तो इम्साल 27:10 में 10वीं आयत में कि अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ें तो खुदा मुझे संभाल लेगा। अगर ऐसा है तो खुदा आपको संभालता है, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी तर्क नहीं करेगा, ये खुदा के कलाम का वादा है। और वो झगड़े जिनका फैसला किया नहीं गया, ये वो ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। हमें माफ़ करना लाजिम है, गुस्सा छोड़ के इंतकाम को भूल जाना माफ़ करना कहलाता है। अगर आप किसी से अभी तक गुस्सा है और आपने अभी तक उससे बदला लेने का जो है वो जुनून बाकी है, तो आपने उसे माफ़ नहीं किया। माफ़ करने का मतलब रहमदिली और फजल दिखाना है, जिससे आप गुस्सा है उस शख्स को आप रहमदिली और फजल दिखाएं, तो ये आपने उसे माफ़ किया। रोमियो 12:18 पौलुस रसूल कहते हैं, जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो, यानी हमें अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम करना है माफ़ करने के लिए। आप अपने माँ बाप को भी माफ़ करें, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप उनसे गुस्सा हैं तो आप उन्हें माफ़ करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप माफ़ करने के पुल को जो आपके और खुदा के दरमियान है तोड़ देंगे। खुदा हमसे जो है वो इनफरादी तौर पे यानी इंडिविजुअली मोहब्बत रखता है, और मुसरफ बेटी की कहानी में उसे बाप के पास वापस आना था बहाल होने के लिए, अगर वो वापस ना आता तो बहाल नहीं हो सकता था। इसी तरह से जो है कई लोग सिर्फ उसी वक्त बहाल हो सकते हैं जब वो खुदा की जानिब लौटेंगे। दो किस्म के लोग पाए जाते हैं आज की कलीसिया में, जन कहते हैं कि एक तो वो जो मुसरिफ बेटे थे और एक जो मुसरिफ बेटे हैं। तो जो एक तो जो खुदा से भाग रहे थे और दूसरे जो खुदा के पास आ चुके हैं। किस तरह इब्लीस हमारी फैमिली को अलहदा करना चाहता है, एक्लीसियास्टिक यानी एक्लीसियास्टिस यानी वाइस की किताब में 4:9-10 आयत में, एक से दो भले हैं, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल लेगा, मगर अफसोस उस पर जो अकेला है कि जब वो गिरे तो उसे कोई संभालने वाला नहीं। इब्रानियों पौलुस रसूल 10:25 आयत में कहते हैं, आपस में रिफाकत रखना ना भूलो। ये बल्कि मैं पढ़ देती हूँ, ये है 25वीं आयत है इब्रानियों पौलुस रसूल का खत 10वां बाब उसकी 25वीं आयत, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, और जैसा बाज का दस्तूर है एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर इस दिन को नज़दीक होते हुए देखें इसी कदर ज़्यादा देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो, जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। यानी कौन सा दिन? जो खुदावंद यीशु के आने का दिन है, और दुनिया की जो है वो दुनिया बुरी से बुरी ही होती जा रही है। तो यहाँ पौलुस कहता है कि आपस में रिफाकत रखें, जैसे आप वक्त को बुरा होते हुए देखें अपनी रिफाकत और शराकत को जो है वो कायम रखें चर्च के साथ, खानदान के साथ, क्योंकि हम जो हैं वो इकट्ठे ज़्यादा बेहतर हैं। अब्लीस हमें इकट्ठा देखना नहीं चाहता, हमारी फैमिली और चर्च के साथ जो है वो हमें इकट्ठा देख नहीं सकता। और अब जो है वो लोग खुदा के घर जाना कम हो गया, और अब्लीस इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि जब लोग बिखरे में होंगे तो वो अपना काम सहूलत और पूरी तरबियत के साथ, पूरी तरतीब के साथ सॉरी कर सकेगा। हमें भी अपने ख़ानदान को संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्रेयर में जेंसन ने दुआ की कि खुदावंद हमें जो है वो कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, हमें यूनिटी, एतहाद की, मुतहद रहने की, यकजहती की, मुआफ़ करने की, मोहब्बत करने का जो है वो खुदावंद हमें मसा दे। और यहाँ पे कलाम में यशुआ कहता है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं और मेरा घराना जो है वो खुदावंद की ही खिदमत करेंगे। फॉर मी एंड माई फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड। जो है वो इब्राहिम को खुदा ने कहा था कि जो है खुदा ख़ानदानों का खुदा है, फैमिली जो है वो खुदा ही का आइडिया है। हमें खुदावंद की ज़रूरत है, अपने घराने को बरकत दें, अपने घराने की हिफाजत करें, अपने घराने को इकट्ठा रखें, खुशियाँ और जिंदगियाँ और बहाली जो है वो खुदावंद हमें जो है दे, क्योंकि जहाँ दो या तीन इकट्ठे हों खुदावंद यीशु ने कहा मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हम जो है यीशु के नाम में जो है ब्लेस्ड है। खुदा मियाँ बीवी को एक देखता है, दो या तीन जो है बच्चों के बारे में और नबूती तौर पर कलीसिया के बारे में कहा गया है कि घर में भी खुदावंद हमारे साथ है, कलीसिया में जब हम इकट्ठे हैं दूसरों के साथ मुत्तहिद हैं तो खुदा हमारे साथ है, यानी यूनिटी में खुदा है, चाहे वो चर्च में है चाहे वो घर में है। तो आज के सारे कलाम के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, सारा जलाल खुदा बाप और बेटे पाक रूह कुदस को देते हैं, और खुदावंद इस बीज की हिफाजत करे, और खुदावंद हम सबों को जो है अपने कलाम के वसीले से ना सिर्फ बरकत दे बल्कि अपने कलाम के वसीले जो है वो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल दे जिसके लिए आज हमने ये सब सीखा है। खुदावंद आप सब अजीज़ों को मेरी तरफ से बहुत सी बरकत की दुआ, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।